तरह तरह के भाव वाली बेटियां अपने भावों का अनुरूप संतरण करती हुई जिला में ऐसे ही मस्जिद हो रही है। उनके अर्थशास्त्रिक भाव कोई कोई दुखित होकर के देख पड़ी है, कोई कोई कितनी की भांति होती थी उतनी होती है वैसे खड़ी है, होश नहीं है, कोई रथ का आराम पकड़ी है, कोई रथ के चक्र के नीचे है, कोई कृष्ण की तरफ में देख रही है। मानो आज कृष्ण भी संत के अनुचर अक्रूर है तो क्रूर उसके संग के प्रभाव से उसके जो दुर्गुण है वो क्रूरता कृष्ण ने दिया। कृष्ण इन गोपियों को देख करके भी नहीं देख रहे हैं आज रथ में चढ़ गए अक्रूर में रथ हमका जो और बड़ी तेजी के साथ रथ करने लगा है। गोपियां खड़ी रही अदुर्वर्षित है अनुवर्षित रहे तो कृष्णा इतने क्रूर कैसे हो गए। गोपियों का कृष्ण में जो भाव है कृष्ण ब्रज में ही रहे केवल तो मथुरा में भी उनके भक्त हैं, द्वारका में भी भक्त हैं और जगह में भी उनके भक्त हैं, वहां भी उनको जाना पड़ेगा कि नहीं। ये जथा नाम प्रपत्यं थे काम प्रसन्न से जाना उन्होंने प्रतिज्ञा की। कुछ उनके कर्तव्य भी हैं जगत में, सविता साधन करना है और प्रत्येक भक्तों के साथ में उनके लीला विलास इत्यादि हैं, किंतु फिर भी और भी तो कुछ कर सकते हैं। इसे अतिरिक्त कुछ गंभीर हो गए गोपियां जो रो रही हैं तड़प रही हैं तो मछली की भांति और कृष्ण से रहा नहीं जाता देखा नहीं जाता, उनका चित्त भी अत्यंत भ्रमित हो गया और ये दृश्य देखा नहीं जाता। उन्होंने अक्रूर को थोड़ा सा इशारा किया सह न सके, इसलिए ऐसा नहीं कि वो क्रूर बन गए, सह नहीं दृश्य को देखने में वो अपारस हो इसलिए उन्होंने इशारा किया। यहाँ पर कृष्ण यद्यपि तो भाव से विभावित होकर के द्रवित हुए किंतु बलदेव जी और अक्रूर के साथ में थे, इसलिए कहीं उन कृष्ण के इस हृदय जो उनका द्रवित हो गया है ये दोनों न समझ पाए इसलिए क्या किया चित्त तो द्रवित हो रहा था मन अब रो देंगे तो भी विलास का इन गोपियों की भांति किंतु कर नहीं सके। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी विजातीय देकर के अपने भावों का संवरण करते थे, जैसे वो
अढ़ाई ग्राम में
जा रहे हैं और उनको स्वरूप के साथ में स्वरूप जी थे, महाप्रभु जी भी थे और साथ साथ में वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी हैं बात्सर रस के रति, इसलिए तो मधुर रस के भाव को नहीं समझते, इसलिए पी जाती हैं यद्यपि प्रेमी हैं भक्त हैं कहाँ उन्नत बात्सर रस के। तभी महाप्रभु जी उनके सामने गोपनीय रखा, ये सब ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल। उद्धव जी ब्रज में गए गोपियों का साथ किया, तभी गोपियों का यह भाव उन्हें संक्रमित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उनकी दीक्षा शिक्षा की गई है, दीक्षा शिक्षा की जब तक कि ऐसा कोई न हो, ऐसा प्रेमिक हो जिसमें गोपियों का यह भाव हो और उससे दीक्षा शिक्षा न हो तो नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा था, अपने माता पिता की सांत्वना के लिए नहीं। वो नहीं हो सकता उद्धव जैसे आदमी के द्वारा, गोपियों को उद्धव जी के बातों से और साफ अधिक बढ़ गया और मरने लगी, उद्दीपना होने लगी। इसके लिए जो गोपियों को सांत्वना होगी, माता पिता को सांत्वना होगी, इसके लिए नहीं भेजा। ये साधारण लोग लग जाते हैं कि माता पिता उनके अर्थों की व्यंजना ऐसी है गंभीर, जैसे कि साधारण लोग नहीं समझते। वो गोपियां ही समझे, या उसमें मंत्र में जो दीक्षित रहने वाले रूप गोस्वामी इत्यादि हैं जो साचर्या हैं वो क्यों समझेंगे। तो इस विषय में जिनका संस्कार नहीं हुआ वो कैसे समझेगा। इसलिए उद्धव जी को भेजा भी तुम्हारा संस्कार हो तब सभी उद्धव जी को संस्कार होने पर भी ये नहीं हुआ गोपियों की सत्या बन जाओ। जब गोपियों की चरण दूरी के लिए कुसुम सरोवर में आज भी उनके चरणों की रज की सेवा नहीं आए तो ऐसे ही हो जाएगा। जिसे अद्वैत वादियों का संग करने से, मायावादियों का संग करने से, या जिनको ये सचरी का भाव नहीं है, ऐसे लोगों के जिनमें वास्तव्य की भावना है उनका संग करने से ये नहीं होगा। जिस कथा के लिए गोस्वामी का ये भाव है वो होने से तब ये इन चीजों को समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महापुरुष उन भावों को विशाखा जी की कृष्ण के लिए भी यह अगम्य है। जगदानंद ने ऐसा लिखा, कृष्ण रथ के समुद्र है रथो वैचार, कृष्ण अनेक रथ है और एक रथ है। एक रथ में वो आत्मरथ का अनुभव करते हैं। सब रथों के जो विषय हैं कृष्ण उस विषय के रूप में उनका साधन करते हैं। यशोदा मैया जी का बात लाड प्यार जो करती है उसको तो समझते हैं, किंतु यशोदा जी जिस भावना से लाड प्यार करती है उसको नहीं समझते। उनके अंदर में क्या भाव, गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं किंतु किस भाव से राधा जी रोषित हो जाती हैं, कैसे उनको मान होता है, कैसे उनका अनुराग होता है, माधव इत्यादि की दशाएं होती हैं, ये कृष्ण के लिए जो बहुरथ है। बहुरथ माने अपना आत्मरथ और उन गोपियों का भावों का साधन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा जी का भाव उनको लिए अगम्य है, अपरिचित है, ये बहुरथ उन गोपियों के जो भाव है उनको नहीं जानते। ये कैसे होगा, उनके अपने जो मंजरी इत्यादि हैं इस रथ में जो विभाव की सवाल हैं उनके लिए होगा। अब विशेष करके जिनको गोपाल मंत्र नहीं मिला, जिसको काम गायत्री नहीं मिली, ये रहस्य सब है। इसलिए ये सब के द्वारा मंत्र की स्तुति से इन चीजों को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता। लाख जन्म लाख चेष्टा कर जिनको ये भाव ही नहीं वो कहां से दे सकता है, उनके संग से नहीं हुआ। विद्वानों के संग से शब्दों का ये ऊपर का जो रूप अर्थ है वो मालूम होगा, उसकी अभी व्यंजन है उसके भीतर में क्या छिपा है ये अनुभूति का विषय। एक केवल व्याकरण से अर्थ करेगा वो क्या बतला सकता है। एक आदमी गीता पढ़ रहा है और गीता पढ़ते पढ़ते रोता है, अब उच्चारण कैसे करता है, अनुसार विसर का कोई भी बात नहीं, ऐसे पढ़ता है रोता है। और पंडित लोग अनुसार विसार का उच्चारण करते हैं, बड़े ठाट से पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं होता। महाप्रभु जी गए उससे पूछा, भाई आप गीता पढ़ते हैं तो रोते क्यों, बात क्या। मैं निरक्षर आदमी हूँ, मैं कुछ अर्थ नहीं जानता, मैं जब गीता सुनता हूँ तो देखता हूँ कि कृष्ण का अर्थ खड़ा है, अर्जुन विषादग्रस्त और कृष्ण उनको समझा रहे हैं, ऐसे प्रेम भरी बातों से समझा रहे हैं, ये सुन करके हमारा चित्र दर्पित हो जाता है, मैं अपने को रोक नहीं पा। ये अनुभूति है इन पंडितों को मुख वक्तव्य करने वाले स्वामी विचार इत्यादि का उनसे ये भाव नहीं आएगा। इसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जितनी प्रकार की गोपियां हैं अपनी भावना को कोई गिर पड़े कौन गिर पड़े स्मृति राधिका अनुभूति, उसमें जो कम है वो अभी मूर्ति जैसी खड़ी है, चित्र विस्तार मूर्ति की भांति, जैसे ये मूर्ति बढ़ी है फिर भक्ति मनोज ठाकुर है चित्र को लेंगे क्या लेंगे, ऐसे मूर्ति की भांति जो गोपियां आगे बढ़कर से रथ को पकड़ लिया उनसे कम उनकी अनुभूति है ना विरस, इसलिए उसको पकड़ रही है और रो रही है, उनको होश है और उनको कृष्ण अपने इशारे के कारण आया से नहीं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ कलकत्तों में, अभी जा रहा हूँ आज कल और कल मैं नारा करके काम समाप्त करके पक्षों में लौटा आए थे। मैंने जिनको होश था अपने वचन रूपी दूर से उनको कहा और वो जाकर के ललिता इत्यादि जो अभी चित्र लिखित खड़ी है या जो गृह है पीछे जाकर के वो कहेंगे कि कृष्ण ये बोल करके हमको गए हैं जो उनसे कह दो क्योंकि अभी तो सुन नहीं सकती, वो तो एकदम दुखित है, इसलिए उनको कृष्ण कहने से भी काम जाएगा, काम में जाएगा वो तो नहीं हो सकता। इसलिए जिनको कुछ होश है, जिसको कुछ विरह का ताप उतना नहीं है, जिनको मादन मुदन का भाव नहीं है, वो लोग कुछ सुन सकते। उनको कृष्ण ने कहा मैं आज जा रहा हूँ, कल रख करके परसों में मुझे मैं जरूर लौटूंगा, ये नहीं कहा कि मैं परसों लौटूंगा, आयते मैं आऊंगा। अब कृष्ण चले गए, ये धूल उड़ रही है, पहले रथ दिखा, कृष्ण पीछे मुड़ करके उनके तरफ में देख रहे हैं, दिशा आप हरी ले जिन्हें की बैठा पीछे समझाए, बलदेव जी को समझाए, नागरू जी को समझाए, उनकी जरा दत्ता कौन समझेगा, जिन गोपियों के लिए कृष्ण का हृदय कैसे तड़प रहा है, ये कैसे समझाए, क्यों नहीं समझा करते, यदि वही अनंत मंजरी होती तो कुछ समझ जाए। बलदेव के रूप में बासल दास्य छप और भास्कर गई में, इसलिए ये नहीं समझ सकते इनके भाव, इसलिए बलदेव जी से नहीं कहा, अपुरुष से कहेंगे, अपुरुष से अपने आंखों को ऐसे पोंछ लिए हूँ, छिपा करके पूछ लिए हूँ, ऐसे गंभीर एकदम बच कितना सबको कर गए उनके पीछे, किस हृदय उनका एकदम कैसा हो रहा है, क्या करूँ क्या, आखिर दब दबाई है करके और गोपियों को गोपियां देख रही हैं, अब इनका चित्र द्रवित हो गया, शायद आ जाए भी लौट, अभी जा रहे हैं बीच से लौट, जब तक खड़ी रही जब की धूल दिखाई थी, धूल भी शांत हो गई, अब ये निष्कुट नहीं आएगा, हताश हो गई निराश, निराश होने के पश्चात वहीं पर बैठ गई हुई। दूसरी गोपियों ने क्योंकि और जिनको इतना पीड़ा नहीं आज घर वाले जो है आकर के किसी प्रकार के लोग जिनको लेकर के जा रहे हैं, इसी के लिए कह रहे हैं सा निराशा निर्दत तो गोविंद देवी बात, और जो गोपियां थी वो क्या हुआ, कृष्ण के विरह में तड़पते ही वो गान करते हुए मूर्छित हो गई, गोविंद छात्र के गिर गई उसको होश नहीं रहा, कुछ चित्र की भांति गई, उसने उनको उनका जो निकास शब्द ये आया कि मैं आऊंगा आ रहा हूं, कि उनको सुनाई पड़ा, किनको सुनाई पड़ा, जिनका हृदय जिला गठित कुछ कम उन लोगों ने सुना, तो ये क्या हुई, ये सुन लिया हुए क्या हुई, यही दौड़ ये दूध एक कृष्ण का वचन जो निकला, वचन दूती नाक को जो दूती
मिलने
आप से ही उनका प्रणय हुआ, उसमें दूती की जरूरत नहीं हुई, ये प्रणय हम लोगों का हुआ, राधा जी कह रहे हैं, अब दूती की क्या जरूरत है, अब विरह में ये दूती क्या करेगी, इसलिए यहाँ पर शाम मिला था ऋतु, अब गोविंद अभी नहीं आएगा, किंतु क्षीण आशा लिए हुए क्या, कृष्ण कभी झूठे नहीं हो सकते, आज तक उन्होंने जितना वादा किया है
सब पूरा
किया, वो सत्य प्रतिज्ञा है, धीर ललित नायक,
धीर
ललित माने नायक माने क्या, प्रति झूठ होने पर भी उसके प्रति बात को जो कहते हैं उसको पूरा, इसलिए रामचंद्र जी ठीक है किंतु ललित नहीं है, तो धीर उद्धत है,
धीर शांत विरुद्ध
चारों प्रकार के न्याय है, धीर ललित धीर शांत धीर उद्धव
उदास्त अनुभव,
इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक क्षीण आशा लेकर, अभी समीर में गया था कोई और किसी और का पति मर गया या किसी किसी का बेटा मर गया, किसी मैया का, और मैया रोते रोते पागल है, उतर रही कि हमारा बेटा मरा नहीं, वो आएगा। ये क्षीण आता है कि वो गया है और वो आ जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, इसीलिए प्राण धारण कर रही कि तो लड़का तो गया है मर, उसको विश्वास नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि फिर तुम्हारा लड़का तो मर गया है। नहीं भाई, वो मरा तो नहीं है, जैसे सुभाष चंद्र जी के लिए पेपरों में आ रहा है, सुभाष चंद्र मरे नहीं अभी है। अच्छा ये बतलाओ तो 100 वर्ष से अधिक की उम्र अब हो गई होती, वो बड़ा है तभी एक फिर आता है। तो ऐसे ही गृही अपने पिया के लिए प्राण शांत के लिए वो पिया सोच रहे हैं, जब तक करके गए हैं आज तक उन्होंने वादा निभाया है, इसलिए आएंगे। इसलिए उस समय तो कृष्ण चले गए, भूल भी चली गई और नहीं आए, तो अब सोच रहे हैं जिससे वो जब गए किसी गंभीर कार्य के लिए तो कार्य को पूरा करके जरूर आएंगे, आए से जब बाहर आएंगे। इसलिए घर को लौटी, अच्छा अब कल के लिए देख रही, फिर कल कल का रही है, अब आते होंगे, फिर देखे आज नहीं आया, रात भर देखता रही देखती रही, और कैसे उनके प्राण बच रहे हैं। प्रिय चेष्टितम निन्यु गायन से अपने चेष्टित, कृष्ण के लीला क्षेत्रों का गायन कर रहे हैं। तो क्या करती हूँ जस्यानुराग ललित
तो बहुत
इत्यादि सब गायन कर रहे, गोविंद दामो जी इत्यादि का गायन कर रहे, जैसे है ना कृष्ण रमण श्रेष्ठ
रमण
हे
का रात में जैसे उनके साथ में हुआ, उनके आंसुओं को पूछे, उनके क्षम बिंदुओं को पूछा, उनके मुंह की धूल को पूछा, उनके चरणों में नकुर पहना रहे हैं, चिठोरियां उनसे कर रहे हैं, वो रहस्य संपितो हितयोदयम सहसितानम प्रेम वीक्षणम ये सब चीजें को याद कर रही है कि कृष्ण कैसे हमसे सिद्ध होगी, और ये सब संस्कृत बातें करते और रो रही है और श्लोकबद्ध अपने आप कर रही है। इसके लिए श्लोक और पदे में उनको बनाना पड़ता, अपने आप सरस्वती के जीवा में, वो तो खुद सरस्वती का अधिष्ठात देवी श्रीमती राधिका है, ये अपने आप ये जो व्यास की अधिकम व्यास ने नहीं लिखा,
राधा जी समाधि में देख करके लिखा,
समाधि में उन्होंने जो कहा वो उसी को ये कर रहे हैं, इसलिए राधिका जी के मुख से या गोपियों के मुख से ये निकले गोपी जी, ये व्यास जी का व्यक्तित्व नहीं है, लोग समझते हैं ये भूल है, उन्होंने समाधि में ये सुना और सुन करके ये गोपी ऊंची भी, ये गोपियों की जो बातें हैं ये सब व्यास की और किसी का लिखा हुआ नहीं, ये गोपियों के मुख हैं, उन्होंने समाधि में इसका अनुभव करके अवश्रण किया तब लिखा। ये श्रीमद भागवत क्या है,
समाधि
है, ऐसा मत समझना जो व्यास देव जी ने इसको लिखा, लिखा नहीं श्रवण किया उसको समाधि में सुना, सुन करके उन्होंने कर दिया। तो विषयों को अहनी निन्दु गायन का किए थे, विशोक यहाँ सब था, विशोक मैंने शोक रहित हो, सब शोक रहित हो रहे हैं जब कृष्ण का गायन करती हैं, और समझते हैं कि कृष्ण मिल रहे हैं, हमारे आत्मों को पोछ रहे हैं, हमें सांत्वना दे रहे हैं कृष्ण अपने आंखों से, उस समय विशोक करके वो मानिनी बन जाती है, परिस्वाधीन भत्रिका बन जाती है, उसी समय कृष्ण है नहीं किंतु वो देखते देख रहे हैं, ऐसे भाव अस्त्र सात्विक विकार हुए हैं जो उद्धव इत्यादि लोगों के लिए समझना भी कठिन है, कृष्ण भी कभी नहीं समझ पाते हैं कभी कभी, इसलिए फिर हमें उनके क्षेत्रों का ध्यान कर, इसलिए कभी कभी शोक मालूम करते हैं, जैसे उनको शोक नहीं है, किंतु जब कृष्ण थोड़ा सा बंद हो जाता है और सामने कृष्ण को नहीं देखती है तो फिर क्या हो जाता है, एकदम आग में तड़पने लगता है, में मछली से भी अधिक भगवान अभी संप्राप्त हो राम आतो रथे वायु देगे न कालीन जी अपनाते हैं भगवान जी। भगवान को इसलिए कहा यहाँ पर बहुत मार्के का विशेष भाव, यहाँ पर कृष्ण गोपियों के भाव में भी भाव होकर के मधुर रस को प्रकाश कर रहे हैं ना, किंतु ये मथुरा जा रहे हैं उनको भूल करके ये भगवत का एक ऐश्वर्य धाम की तरफ जा रहे हैं ना, जहाँ उनकी तो नहीं था वृंदावन बड़े को छोड़कर के गोपियों का प्रेम माता पिता का स्नेह छोड़ करके जाना संभव नहीं था, किंतु चूंकि भगवान है उनमें ऐश्वर्य भी भाव है, इसलिए पंख को मारना चारों को मारना और सब पशुओं का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा भी करनी है आत्म धर्म, इसलिए उस समय में ये ऐश्वर्य आया, ये ऐश्वर्य भाव संक्रामित होने के कारण ही मथुरा जा रहे, इसलिए ये भगवान है। कभी यदि नंद पुत्र होते, गोपी कांत होते, राधा रमण होते तो जाते कभी, इसलिए उनके लिए कहा जैसे देखो ऐसा मत समझो वो भगवान जी, उनके लिए तो और भक्तों के भी भाव देते हैं ना, उनको ये भी देखना है कि कंस को मारना, हमारे माता पिता जो ऐश्वर्य के ये हैं हमारे उपासक हैं वो पेड़ियों हथकड़ में बंद हैं, उनके छाती पर चक्की रखकर के दाल पीसा जा रहा है, अपने पैरों के अंगूठे से उसे मारता है, अपमानित करता है, इसलिए हमारे इन्हें जरूर द्वारका में बहुत सी रानियों के साथ में विवाह करना है वहां पर, असुर जैसे काल जमन है और जरासंध है तो सप्तभूत कौन बना था पांडव से इनका संहार करना है, वो बंदर देवी इत्यादि का ध्वंस करना है, ये तो ऐश्वर्य में लीला है, इसलिए उसको करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भगवान अपि भगवान होते हुए भी हो जा रहे हैं राम अक्रूर तो झूठो, यहाँ का राम है और अक्रूर अक्रूर कौन रस के भक्त है, दास्य माने कौन दास, ब्रज का दास्य नहीं ऐश्वर्य जी, इसे ऐश्वर्य जी जो दास है उसके सामने ये मधुर गोपियों की भावना को मैं कैसे मैं रो और कौन से गोपियों के मैं बहुत देर में आती हूँ ये कैसे कह सकते, ये संभव बद्र जी से भी नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को कहा जगत्ते की तरफ हम इसे चाह नहीं जाए, बस आगे वायु देगे ना वायु देख से रथ उड़ने लगा, कैसे घाटों के माध्यम से इस तरह से उधर गोपियां आकर के रथ का चक्का का पहिए का चिन्ह दे करके कहीं पीछा ना पाए, इसे कभी घाटों से कभी इधर से कभी उधर से टेढ़ा मेढ़ा करते हैं वायु देख से लेकर के चलते कालीन जी अपन आते हैं कालिंदी, ये कालिंदी नदी जमुना है, कालिंदी कालिंद पर्वत से निकलती है, उनका पानी कैसा है कृष्ण जैसा है, क्यों कृष्ण जैसा, गोपियों को नैनों में बसते हैं उनका काजल जमुना में भी था, कृष्ण का अंग कैसा है नील मणि के समान है, इसलिए उन अंगों का अंग राग भी जमुना में मिल करके नीचे से नील देता है, क्योंकि जब उठाएंगे तब कैसे एक उज्जवल दिखता है, इसलिए उज्जवल नील मणि के समान है, इन्हीं के आधार पर उसको समय ने उज्जवल नील मणि ग्रंथ की रचना की, उनके भावों को है? वो भाव क्या है, ये जो उज्जवल नदी में जो भाव जो है श्रीमती राधिका के नीचे यही उज्जवल मणि, कृष्ण के लिए उज्जवल मणि है ऐसा नहीं, वो तो उत्प्रेक्षा में उनको लगा सकते हैं, माने इस तुलना के लिए कृष्ण को नील मणि कहते हैं, किंतु नील मणि है क्या, राधिका जी के कृष्ण के प्रति ये जो मदन आश्चर्य और मातन आश्चर्य का भाव ये उज्जवल नील लड़ी है, ये जसोदाहीन में कालिंदी में ये कुछ संक्रमित हुए हैं उनके भाव, इसलिए वो भी काली सी दिखती है कृष्ण जैसी कैसी है वो कालिंदी। अब ना कहीं अब को नाश करने वाली है, अब मैं कृष्ण जी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके क्या करें, सत्रो उपस्पृश्य सविदा पिछवा मृत मणि पर हम संडम अनुप्रज्ञ सरामो रथम आविश। कृष्ण वहां पर रथ से उतरे बलदेव जी के साथ और उतर करके पावनी जमुना जी के किनारे पहुंचकर सविदा पिछवा शरीर का आचमन किया, स्नान किया अपने अंजलि के बाद और आचमन किया कैसे मित्र मंत्र समस्त अवो को नाश करने वाली है। ये कृष्ण ने सोचा आज दुखों से देर में गौ ये दुख है ना, तो दुख किस कारण से होता है, असत के कारण, असत के कारण ये दुख होता है, बिना पाप किए तो होता नहीं। तो यहाँ पर विरह जो दुख है ये पाप ताप के लिए नहीं होता, किंतु इससे बहुत गुण अधिक प्रभावकारी है। कृष्ण सोचा यार विरह में व्यतीत हो रहा हूँ, ये ताप जाता नहीं है, मैं किससे कहूँ किससे करूँ, कोई हमको सांत्वना न देगा, ये जमुना सरिता ये राधा जी की शक्ति है, यदि इनका मैं स्पर्श करूँ इनका पान करूँ हमारा भी अब अतत विरह का जो ताप है ये कुछ प्रश्न हो जाए। इसलिए उत्तर करके जमुना के पावन पुल पर उत्तर करके उनका जल पान किया और अपने इस पर छिड़का, इसलिए कि हमारा ताप शांति, वो ताप क्या है कृष्ण का पिताजी तो साथ में है, कथा लोग भी साथ में है, इसलिए उनका विरह नहीं। पीछे चलते किन का विरह, जिनसे कहा जो तुम कह रहे आए उससे उनके लिए नहीं, जो विरह प्रतीत होकर तुम वहां पर शक्त गाते ही गिर गई मुझे हमें आतुर होकर उनके। तो ये सोच रहे हैं कहो जमुना जी का स्पर्श से आसन से हमारा ये ताप दूर हो जाए, इसलिए जमुना के किनारे बड़े बड़े सुंदर वृक्ष आई है, सब सुंदर सुंदर कदम्ब के वृक्ष हैं, तमाम वृक्ष हैं, आम के हैं, कदम्ब के हैं, नीप हैं और उस तरह के हरे पड़े हैं, इसलिए वृक्ष संग संग माने समूह वृक्षों से समूह से भरपूर ये जमुना है। की गरम नरम हमारे वो कदम बहुपिता जन्मगंधरंजनी मानसनाथ सरदार ऐसी ये जमुना जी है। जमुना को देखकर तो उनको शांति आई और वहाँ उतर करके जब वक्त करते हैं मान में ये कुछ मर्क है कुछ दुख उत्पन्न हुआ उतर करके राम के साथ में और फिर रथ में बैठे गए। फिर अपने बैठे किसी अपूर्व करे थे अपूर्व कालीन हृदय आगता स्नान आचर अपूर्व ने क्या किया, राम के आलोक उनके साथ में उठते थे और उनके साथ में आचरण नहीं किया, क्यों योग्यता नहीं है, इस जगह पर से उतर करके खड़े रहे। दूसरा उनको भय है कि कोई शत्रु न आ जाए, बाबासुर बकासुर कंस के जितने अंतर हैं उनको भय है कि मैं ले करके आ रहा हूँ, जब तक वहां पर मथुरा में न पहुंचा दू काम नहीं हो जाए तब तक बीच में कोई सी बाधा आ करके कृष्ण बलदेव के ऊपर में आक्रमण न कर सके, इसलिए पहरा देने के लिए से पास में बैठे वो खड़े रहे उन पेड़ों की छाया में। अकृष्ण जमुना में जाकर के बलदेव जी आचमन किया, फिर उनको कहा कि आप रथ में बैठिए मैं अभी आ रहा, क्यों उनकी सुरक्षा के दृष्टि रथ का धनुष बाण है और मथुरा जा रहे हैं ना, अपू जी किस गड्ढे आए थे रथ में धनुष बाण अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं, साथ में कूड़ा भी है घोड़ों को चलाने के लिए, तो वहां पर रखे हैं। और दूसरी बात जमुना के किनारे में या कहानी है वहां पर टीचर भी हो सकता है और हो सकता कि कांटे कुछ भी हो। विशेष करके ब्रज में कुछ ऐसे कांटे होते हैं वो दिल दिखते नहीं है, वो कुछ वो फैल देंगे कपड़े में, यहां से यहां तक फर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पैरों में यहां से यहां तक एकदम लग जाएंगे, उसके छोटे छोटे पतले पतले वो टूट जाएंगे, वो निकलेंगे टूट करके उसी में रह जाएंगे। हम लोग गुरु जी के साथ में पत्थर ये सब है, इसलिए कोई कोई चप्पल कोई कुछ पहन लेते हैं
दुख का पहन,
किंतु ये भी समझिए ये कांटे जो पहुंचते हैं भीतर में, ये आजकल एक प्रक्रिया करती है चिकित्सा की,
आपको प्रेशर
आपको प्रेशर का काम करती है, इसलिए कृष्ण जूते नहीं पहनते थे, इसलिए कांटों का रखना भी टाप तो नहीं होता, उसको निकालने से आपको प्रेशर अपने ऊपर ये सब चीजें हो जाती है।
एक बार गोकुल कांटे से मेरा घाव हो गया था।